शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बागवान बाप दादा अपने बगीचे में आए हैं और बगीचे में किस किस को देख रहे हैं? अपने मालियों को देख रहे हैं और साथ साथ फूलों को देख रहे हैं। कांटे तो कोई नहीं होंगे। शिव बाबा बाप दादा बागवान के बाग में तो माली है और फूल है, पर फूल भी कई प्रकार के हैं। तो बागवान की नजर मालियों पर भी पड़ती है और फूलों पर भी पड़ती है। लेकिन कैसे बागवान देखते हैं वो आज सारी मुरली है। किस रूप में उनको देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, आज बाबा ने सारा उस रूप से वो जैसे दृश्य बताया है। तो बहुत ही सुंदर मुरली है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 6/6/2024 है। 6/6/24 मीठे बच्चे, बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को क्या करना है? मालियों को, माली किसको कहते हैं बाबा? जो सेवा करके ले आते हैं भाई बहनों को। तो इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। अब बागवान या माली मुरझाया हुआ फूल बागवान के आगे रखे तो ऐसे माली को क्या कहेंगे? तो बाबा कौन से फूल चाहते हैं? खिले हुए फूल, खुशबूदार फूल, न कि मुरझाए हुए फूल। तो बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लाने हैं। ऐसा फूल नहीं लाओ जो मुरझाया हुआ हो। प्रश्न है, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? बाबा तो सबको दृष्टि दे रहे हैं लेकिन सभी पर नजर नहीं पड़ती है। तो बाबा कहे किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? उत्तर है, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। कौन से फूलों पर बाबा की नजर पड़ती है? जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं, उन्हें देख देख बाप खुश होते हैं। उन पर ही बाप की नजर जाती है और जिनकी अभी जो मुरझाए हुए हैं और जो खुशबू भी नहीं देते हैं तो क्या देंगे? बदबू होगी। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें दोखा देती है, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। पहले खुद फूल बनो, मुरझाया हुआ फूल नहीं, खुशबूदार फूल खुद बनो, फिर दूसरों को बनाओ, फिर बाबा के पास ले आओ। बाप तो कहेंगे बच्चे फूल बन, अनेकों को फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। औरों को फूल बनाया माना माली हो गए, पर माली खुद भी तो खुशबूदार फूल होना चाहिए न। ओम शांति। बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है, वहां बागवान नहीं है। बाप दादा तो मधुबन में है, तो सेंटरों पर तो टीचर्स बहने हैं और स्टूडेंट्स आते हैं। तो बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर्स पर तो फूल और माली है, यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने। तुम फूल हो ना, सभी फूल बैठे हैं यहाँ। तुम भी जानते हो और बाप भी जानते हैं। क्या जानते हैं बाप भी और हम बच्चे भी, कि कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण और फूलों के बगीचे का बीज रूप है राम, शिव बाबा। वैसे तो बागवान, वैसे तो शिव बाबा सारे बगीचे का फूल है, सारे बगीचे का बीज है, लेकिन कांटों का जंगल जब बन जाता है तो उसका बीज है रावण। तो बाबा कहे, बाप भी जानते हैं कांटों के जंगल का बीज रूप है रावण। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, शिव बाबा ही है सारे झाड़ का बीज, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी जरूर होगा। जरूर होगा जो फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल बनाता है, वो है रावण। तो जज करो, बाप ठीक समझाते हैं ना कि बाबा है फूलों का बगीचा बनाने वाला और रावण है कांटों का जंगल बनाने वाला। बाबा ठीक कहते हैं ना, देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो, ये तो हर एक जानते हैं। अब फूल बैठे हैं सब, तो बाबा कहते हैं हर एक जानते हैं कि हम किस किस्म का फूल हूँ, मैं किस किस्म का फूल हूँ, हर एक फूल जानता है। बागवान भी यहाँ ही आते हैं फूलों को देखने, वो तो सब है माली, वो तो सेंटरों पर तो माली है, वो फूलों को देखते हैं। यहाँ तो बागवान स्वयं आते हैं फूलों को देखने, वो तो सब है माली। अब वो भी अनेक प्रकार के माली है, जो सेवाएं करते हैं, स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, ले आते हैं, वो भी अनेक प्रकार के माली है, और फूल भी अनेक प्रकार के हैं, वो भी अनेक प्रकार के माली हैं। उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना, बड़े बड़े बगीचे होते हैं तो उनके जो माली होंगे वो कितने होशियार होंगे। बाबा ने मिसाल दिया है मुगल गार्डन का, जो राष्ट्रपति भवन का बगीचा है ना, बहुत ही सुंदर है। पहले उसको मुगल गार्डन कहते थे, अभी उसका नाम बदली कर अमृत उद्यान रखा है, तो अमृत उद्यान। तो बाबा कहते उसके जो माली होंगे उनकी पगार भी कितनी अच्छी होगी, ज्यादा ही होगी ना, राष्ट्रपति भवन के बगीचे के माली है। तो बाबा कहते उस बगीचे के भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना, कोई की 500 रुपया तनख्वाह होती है, कोई की 1000, कोई की 2000, ये उस समय की बात है, अभी तो कितनी होगी तनख्वाह। जैसे मुगल गार्डन का माली, अभी अमृत उद्यान, तो जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी अधिक होगी। ये तो बेहद का बड़ा बगीचा है, बेहद का बड़ा बगीचा, वो तो फिर भी हद का बगीचा होगा। और कितने फूल होंगे, यहाँ तो देखो बाबा के बच्चे कितने फूल हैं। तो वो है हद का बगीचा, ये है बेहद का बड़ा बगीचा। उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली है, एक माली थोड़ी होगा, कितने माली होंगे उस बगीचे के भी। जो बहुत अच्छे माली होते हैं वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनीक बना देते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, देखा है किसने? देखा है, क्योंकि वो फरवरी महीने में ही खुलता है, जब उस समय स्प्रिंग सीजन है, बाहरी मौसम है, फूल बहुत अच्छे निकलते हैं, उसी समय वो जनता के लिए खुलता है। सारा साल नहीं खुलता राष्ट्रपति भवन में, ऐसे कोई नहीं जा सकता है, लेकिन फरवरी महीने में जनता के लिए खुलता है। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, ये है बेहद का बगीचा। एक है भगवान, हाँ भगवान एक ही है। अब कांटों के जंगल का बीज है रावण और फूलों के बगीचे का बीज है शिव बाबा। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता है। तो रावण से क्या मिलता है? श्राप। बाप से मिलता है वर्षा। रावण से वर्षा नहीं मिलता है, वो जैसे श्राप देता है। जब श्रापित होते हैं, हम सब श्रापित हो जाते हैं रावण द्वारा, तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सुखदाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं। बाबा सेंटरों पर भी जाते थे ना, तो देखते थे बच्चों को, तो मालियों को भी देखते थे जो सेंटर पर बहने रहती थी, और कैसे उन्होंने फूल तैयार किए अपने बगीचे में। तो बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे माली भी आते हैं, बाबा के पास माली भी वैरायटी है, टीचर्स भी वैरायटी है, तो अच्छे अच्छे माली आते हैं। उनों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है। अच्छा माली होगा तो वो सजावट जो करेगा फूलों का, वो भी बहुत सुंदर करेगा। तो उनों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके अच्छी हो जाती है, तो बागवान को भी खुशी होती है जब ऐसे फूलों को देखते हैं, मालियों ने कैसे सुंदर फूल तैयार किए हैं। तो बाप दादा को भी खुशी होती है, ओहो ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। फिर वो मधुबन में ले आते हैं तो बाबा उनको देखते हैं, ये माली कितना अच्छा है, फूल भी अच्छे अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। अब कोई नया सुनेगा कौन सा कहेगा, क्या फूल क्या माली, ये अच्छे अच्छे फूल, किसको कहते हैं, क्या फूल तो कुछ है ही नहीं, ये तो नकली हो गई ना। हाँ ये तो बाबा के बच्चे तो अच्छे सच्चे चैतन्य फूल है। ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो, बाबा बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कल्प चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, हाँ है ना, जंगल में जाओ तो वहां क्या होगा, कांटे ही कांटे होंगे, बहुत दुख देते हैं। साड़ी पहन के जाओ तो वो साड़ी अटक जाएगी, कहीं ना कहीं अटकती रहती, कितना ध्यान से जाना पड़ता है जंगल में, कहीं भी अटक जाएगी किसी भी कांटे में, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। वो माली कितना ध्यान रखता है कि अगर कहीं वो वीड्स भी निकलती है ना, ऐसे ही घास फूस, उसको भी निकाल देते हैं, कहीं भी कांटा तो क्या वो घास फूस भी नहीं रहने देते हैं। तो बहुत बाबा कहते हैं बगीचे के बीच में कांटे थोड़ी होते हैं, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण देह अभिमान में ले आता है, तो सबसे बड़ा कांटा कौन सा हो गया, देह अभिमान। तो बड़े ते बड़ा कांटा है देह अभिमान। बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किनों की दृष्टि कामी होती है। अब देह अभिमान आया तो विकारों में तो फंसे ही, और सबसे पहले दृष्टि कामी बन जाती है। तो बाबा कहे, बाबा ने रात्रि को भी समझाया, किनों की दृष्टि कामी रहती है तो कोई की सेमी कामी दृष्टि होती है। कोई की तो एकदम कामी है और कोई की सेमी, माना आधा, इतना नहीं, फिर भी कामी तो कहेंगे ना, सेमी कामी दृष्टि है। कोई नए नए भी आते हैं जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं, समझते हैं विकार में कभी नहीं जाएंगे, बाबा के बच्चे बनते हैं कहेंगे बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, अच्छे अच्छे चलते हैं, पवित्र भी रहेंगे ये भी वायदा करते हैं, उस समय शमशानी वैराग्य आ जाता है। अब उनको टीचर मधुबन में ले आती है क्योंकि वो चलो 6 महीना पवित्र रहे, 1 साल पवित्र रहे और बाबा के पास आए और वायदा भी किया बाबा कुछ भी हो जाए फिर विकारी नहीं बनेंगे। लेकिन मधुबन में आने के बाद वापस गए तो फिर दृष्टि वृत्ति चंचल हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वो उस समय तो कहेंगे हाँ पवित्र रहेंगे, वायदा करते हैं, उस समय फिर शमशानी वैराग्य आता है। इतना वैराग्य दुनिया से बात मत पूछो। अब शमशानी वैराग्य तो केवल शमशान में ही आता है ना, घर गया तो वो वैराग्य तो खत्म। बताते ना किसी बहुत बड़े आदमी की अंतिम यात्रा निकल रही थी तो सब लोग कहते थे देखो कितना धनवान था, क्या लेकर गया, सब कुछ यहीं छोड़ के गया, हम भी एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे। शमशानी वैराग आता है खुद को भी, हम भी ऐसे ही जाएंगे। लेकिन अब वहां कहते हम भी क्या ले जाएंगे, सब यही रह जाएगा, वो भी यही सब छोड़ के गया। तो जब वापस जाते हैं संस्कार करके तो कहते वो तो छोड़ के गया, हम तो जिंदा है ना, हम तो है ना, अभी थोड़ी हम मर गए हैं, तो हम तो जिंदा है ना, तो हम तो उन पर थोड़ा अधिकार रखेंगे, वो तो गया वो तो वापस नहीं आएगा, तो हम तो अधिकार रख सकते हैं ना। तो शमशान में वैराग्य आया हम भी क्या ले जाएंगे, और जब वापस गए हम भी कुछ है ना, हम भी कुछ है, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं तो उस समय शमशानी वैराग्य आता है, फिर वहां घर में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं। तो यहाँ तो बाबा के पास इतनी दृष्टि पवित्र बनाते हैं जैसे कि मेरे जैसा पवित्र तो कोई है ही नहीं। लेकिन बाबा कहते घर गए तो दृष्टि तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये बहुत अच्छा फूल है, कोई कोई माली कान में आकर बताते हैं, वो बहने बाबा को कान में आके बताती थी कि ये फलाना फूल है ना, उनका परिचय बाबा को कान में देती थी, ये फलाना फूल है। माली तो जरूर बताएंगे ना, बागवान को बताएंगे अपने फूलों के बारे में, बागवान तो जरूर बताएंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी हैं। माली हरेक की चाल चलन बताते हैं। अभी अव्यक्त बाप दादा के सामने भी आते थे बच्चे तो बाबा को बताते थे, बाबा ये कौन है क्या है बताते थे, तो बाबा कहते समझते थे हाँ करते थे। तो कई कहते थे बाबा को क्यों बताना चाहिए, बाबा तो सबको जानते हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं, बाबा को बताने की जरूरत है क्या। लेकिन बाबा पूछते नहीं थे, लेकिन टीचर्स खुश होती थी, बाबा को बताती थी, अव्यक्त बाप दादा को भी बताती थी, तो बाबा तो हाँ भरते थे, पर नहीं भी सुनाए बाबा तो समझ जाते थे। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, चलो शिव बाबा है पर ब्रह्मा बाबा तो नहीं है ना, तो ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है, माली हर एक की चाल चलन बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, बाबा को फिर ये भी बताएंगे इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% सुधरी है, फिर ये भी बताएंगे। मूल है आंखें, मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे, बाबा एक एक से पूछते हैं बताओ तुमने कैसे फूल लाए। पहले बाबा टीचर को बुलाएगा, स्टूडेंट्स को बाद में बुलाएगा, टीचर को बुलाकर पूछेगा तुमने कैसे फूल लाए हैं। तो बाबा कहते बाबा एक एक से पूछते हैं बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं, कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के, हाँ मोतिये के तो छोटे छोटे होते हैं और बहुत सुगंधित होते हैं, कोई मोतिये के, कोई अक के भी ले आते हैं, यहाँ बहुत खबरदार रहते हैं, फिर जंगल में जाते हैं तो फिर मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं कि ये किस प्रकार के फूल हैं। माया भी ऐसी है, क्या है माया, ऐसी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है। फूल तो छोड़ो, जो माली फूलों को ले आए हैं उन मालियों को भी थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाप बैठ उनको श्रृंगारते हैं, सबको दृष्टि दी, फिर बाबा मुरली चलाते हैं तो जैसे बाबा सबको श्रृंगारते हैं। बच्चे खबरदार रहो, खामियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा, अगर खामियां नहीं निकाली तो क्या होगा, तो फिर बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने, राजाओं का राजा बनाने आए हैं और वहां जाके नौकर बनेंगे, यहाँ राजा ही दिखाते हैं परंतु वहां तो जाके नौकर बनेंगे ना। पर बाबा ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि मेरे बच्चे जाके नौकर बने, पर बनेंगे अगर सेवा नहीं करेंगे पूरी। तो बाबा कहे, बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने, अपनी जांच की जाती है, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं। ये तो जानते हो कि कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज राम है, ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं, लौकिक स्कूलों की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वो पढ़ाई फिर भी अच्छी है क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, वो पढ़ाई पढ़ेंगे कोई डिग्री लेंगे तो उससे उनको नौकरी मिलेगी, तो सोर्स ऑफ इनकम है, कमाई का साधन है डिग्री प्राप्त की, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है क्या बनना है, ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है, फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं, इस प्रकार की एम ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं है, है ना। लक्ष्मी नारायण बनने के एम ऑब्जेक्ट कोई बताएगा क्या, वकील बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, यही बताएंगे। फिर कहाँ भी ये एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है, तुम्हारा एक ही एम है नर से नारायण बनने का। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बहुत बहुत सुनाते हैं, हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, हाँ सुनते हैं, घर घर में सत्यनारायण की कथा चलती है, ब्राह्मण को बुला, पहले तो बहुत करते थे, हमारे घर में भी मुझे याद है ब्राह्मण को बुलाते थे और वो सत्यनारायण की कथा करता था। तो बाबा कहे, भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं, हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूर्णमासी पर खास ब्राह्मण को बुलाएंगे, सत्यनारायण की कथा करवाएंगे, हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, फिर ब्राह्मण गीता भी सुनाते हैं, आजकल तो गीता सब सुनाते हैं, सब सुनाते हैं गीता, सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो, तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की कथा भी है, तीनों वास्तव में एक ही है, तीसरे नेत्र खुलने की कथा, चाहे अमर बनने की कथा, चाहे नर से नारायण बनने की कथा, एक ही है ना, कैसे मनुष्य नर से नारायण बनता है, फिर नारायण से नर बनता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान यही तो कथा है। तो बाबा कहते हैं, सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की कथा भी है। भगवानो वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए, फिर कौन राजा बना, क्योंकि गीता में है, मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब गीता तो पढ़ते हैं, कौन बना राजाओं का राजा, कोई भी नहीं, फिर कौन राजा बना, ऐसा कोई है जो कहे मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा, हर एक जाएगा मैं राजा बनूं, तो जो सुनाने वाले भले सुना देंगे, कहेंगे भगवान ने ये कहा, परंतु खुद को थोड़ी भगवान मानेंगे, चलो कोई माने भी, लेकिन मैं राजा नहीं बनूंगा, तुमको मैं बनाऊंगा, ऐसे थोड़ी कहेगा। तो बाबा तो कहते मैं नहीं बनूंगा राजा, तुमको बनाता हूं, मैं खुद नहीं बनूंगा, ऐसे कोई नहीं कहेगा। ऐसा कभी सुना? ये एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे जानते हैं यहाँ बागबान के पास रिफ्रेश होने आते हैं, माली भी बनते हैं फूल भी बनते हैं। बाबा के पास आते हैं, माली भी बनते हैं फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, केवल फूल नहीं, माली भी बनना है, औरों को भी फूल बनाना है। तो ये बाबा कहते हैं माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली है। अब सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? माली पहले, माली बनने के लिए अच्छा फूल बनना पड़ेगा। अच्छा फूल बनेंगे तब फूलों को तैयार करेंगे, तब माली कहलाएंगे। सर्विस नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे? हरेक अपने दिल से पूछे मैं किस प्रकार का फूल हूँ, किस प्रकार का माली हूँ। बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। अब इस पर मंथन करो, विचार सागर मंथन, मैं किस प्रकार का माली हूँ, किस प्रकार का फूल हूँ। ब्राह्मणियां जानती है, टीचर्स बहने जानती है, माली भी किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई अच्छे अच्छे माली भी आते हैं जिनका बड़ा अच्छा बगीचा होता है, बड़ा अच्छा बगीचा होता है उनका। जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं। हाँ, होशियार टीचर होती है तो स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं ना उनके, सब खुश होते हैं, जाएं जाएं क्लास में, हमारी टीचर मुरली सुनाएगी। तो और कोई ऐसे सुनाते हैं तो वे नहीं नहीं कौन जाएगा। स्कूल कॉलेज में भी ऐसा ही होता, अब फलाना प्रोफेसर पढ़ेगा, कोई नहीं जाएगा, वो फलाना पढ़ाएगा, चलो चलो चलो। हाँ, ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते जैसे अच्छा माली तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं, तो जो देख, अच्छे अच्छे फूलों को देख दिल खुश हो जाता है। कोई कोई हल्के फूल ले आते हैं, बागवान समझ जाते ये क्या क्या पद पाएंगे, वो माली भी क्या क्या पद पाएगा, फूल ही हल्के हल्के लाया। अभी तो टाइम पड़ा है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है, एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। सेंटरों पर टीचरों को कितनी मेहनत लगती है, एक एक को समझाना, एक एक को बाबा की बातें सुनाना। एक एक कांटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है, कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, ऐसे भी है, कांटे ही रह जाना चाहते हैं, फूल बनना चाहते ही नहीं है, कांटा ही पसंद करते हैं। कांटा कौन पसंद करते हैं? आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, अपने आप को सुधारने का प्रयास ही नहीं करते हैं, दृष्टि गंदी रहती है। तो बाबा कहते हैं वो तो कांटा फूल बनना ही नहीं चाहता है। आंखों की वृत्ति बहुत गंदी रहती है, यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती है, भले वो यहाँ आएंगे, चलो कहेंगे भी हाँ मैं पवित्र रहूंगा, पवित्र हूँ, लेकिन खुशबू नहीं आती है उनमें से, उनकी दृष्टि से पता चलता है कि अभी इसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इतना ये पवित्र नहीं है, पता चल जाता है। तो यहाँ आते हैं तो भी उनसे खुशबू नहीं आती। बागवान चाहते हैं मेरे आगे फूल बैठे तो अच्छा है, ऐसे वैसे को नहीं बिठाओ, मेरे आगे फूल ही बैठे तो अच्छा है। जिनको देख खुश होता हूँ, देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है तो उस पर नजर भी नहीं डालते हैं, ऐसी है वृत्ति तो नजर भी नहीं डालते हैं, इसलिए एक एक को देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं। हाँ बाबा देखते हैं ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं, कांटे से फूल बने हैं वा नहीं। हर एक खुद भी समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हाँ हर एक अपना अपने को देखे, मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ जो कांटे से फूल बन रहा हूँ। घड़ी घड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं घड़ी घड़ी बच्चे, बाबा हम आपको भूल जाते हैं, ये भी कितनी बड़ी इंसल्ट है ना, किसी को कहो मैं हम आपको भूल जाते हैं। अब बाप दादा के पास भी एक आया, अब एक बाप दादा के पास, बाबा हम तो बाबा आपको भूल जाते हैं, नहीं याद रहती है। तो देखो बाबा के सामने भी कहते, किसी को ऐसे कहो तो ये तो इंसल्ट है उसकी। लेकिन बाबा ने बहुत मुस्कुराया, मैं सोच रही थी बाबा क्या जवाब देंगे, बाबा मैं तो बाबा को भूल जाता हूँ ऐसे काम। तो बाबा ने एकदम पावरफुल दृष्टि दी, इतनी पावरफुल दृष्टि दी जो हम भी बाबा को देखते रह गए, कैसे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा बाबा याद ही नहीं आता ऐसे का। तो बाबा ने फिर पूछा, बहुत पावरफुल दृष्टि दी, कहा अच्छा अभी बाबा याद आया? तो कहा हाँ बाबा अभी याद आया, बहुत अच्छा लगा योग। फिर बाबा ने कहा अभी कैसे अच्छा लगा? फिर बाबा ने, फिर उसने कहा बाबा अभी आप सामने थे ना। तो बाबा ने कहा बस यही हमेशा समझो, बाबा को सामने समझो तो हमेशा ही योग लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते हैं। अरे बाबा कहे अरे याद नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूल बनना है तो याद तो करना पड़ेगा ना, फूल कैसे बनेंगे याद नहीं करेंगे तो? याद करो तो पाप कटे, तब फूल बनकर फिर औरों को भी फूल बनाएंगे। खुद याद करते नहीं, खुद फूल है नहीं, तो दूसरों को फूल भी कैसे बना सकेंगे? तब माली नाम रख सकते हैं। तो किसको माली नाम देंगे? जो फूल खुद बने और दूसरों को फूल बनाए। बाबा मालियों की मांग करते रहते हैं, है कोई माली? टीचर्स की मांगनी होती है ना, सेंटर बनाया है लेकिन कोई हैंड नहीं है, टीचर नहीं है, है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते? क्यों ऐसे मांगनी करते रहते हैं? माली बन जाओ, खुद ही सेवा करो। क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं माली बनते हैं? क्यों नहीं बाबा की सेवा करते हैं? क्यों नहीं सेंटर पर बहने रहती है? हाँ कुमारियां तो आजकल बहुत डरती है, हाँ सेंटर पर नहीं, सेंटर पर नहीं। बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं माली बन सकते हैं? बंधन तो छोड़ना चाहिए ना। माली क्यों नहीं बनते? क्योंकि सब कहते हैं बंधन है, तो बंधन तो छोड़ना चाहिए ना। अंदर में जोश आना चाहिए, सर्विस का उल्लास रखना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी है, बंधन मुक्त बनने की मेहनत करनी है। ऐसे नहीं बंधन है बंधन है तो बंधन बंधन कह करके वहीं बैठ जाओ। तो अपने बाबा कहते हैं बंधन को छोड़ना चाहिए, अंदर में जोश आना चाहिए। हाँ कुमारियां, कुमारियां हाथ उठाओ, है कोई यहाँ? कितनी कुमारियां? हाँ देखो, जोश आना चाहिए, बाबा कुमारियों को कहते हैं। सर्विस का उल्लास रहना चाहिए, अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। जिसमें बहुत प्यार है, जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? तो बाबा से प्यार है ये भी कहते हैं, फिर बाबा से प्यार है तो छोड़ना थोड़ी होता है बाबा को, बाप फिर छोड़ना होता है क्या? बाप की सर्विस लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों के लिए ऊंच पद है, महाराजाएं राजाएं बड़े बड़े साहूकार भी हैं, सतयुग में सब बनेंगे, फिर नंबर वार कम साहूकार भी हैं, प्रजा भी हैं, अब हम क्या बने? हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े, नर से नारायण बनना चाहिए, नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो अमल करेंगे। रोज की आमदनी और घाटे का देखना होता है, रोज रात को अपना पोता मेल देखना होता है, रोज की आमदनी कितनी हुई, प्रॉफिट कितना हुआ और घाटा कितना हुआ, नुकसान क्या हुआ। 12 मास की बात नहीं, ऐसे नहीं 12 मास के बाद अपना चोपड़ा देखना है, रोज का चोपड़ा देखना है, 12 मास की बात नहीं, रोज अपना घाटा और फायदा निकालना चाहिए, घाटा नहीं डालना चाहिए। नहीं तो अगर घाटा डाला तो क्या होगा? 3rd क्लास बन पड़ेंगे। स्कूल में भी नंबर वार तो होते हैं ना, तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, वापस वही बात पर आए, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है, कौन है बीज? वृक्षपति, वृक्षपति शिव बाबा, वृक्षपति है बीज है, जिसने जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। कई पूछते हैं बृहस्पति गुरुवार को एक भोग क्यों लगता है, रोज क्यों नहीं भोग लगता है, बुढ़ी के बाद रोज भोग लगे, तो बाबा ने कहा बृहस्पति की दशा बैठनी है ना, इसीलिए बृहस्पतिवार को ही भोग लगना एक बार बाबा ने कहा। तो जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है, फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है। हाँ वैसे तो रोज भोग लगता है लेकिन क्लास में तो गुरुवार को लगता है, कहाँ कहाँ संडे को भी लगता है। कई सेंटरों पर मैंने तो विदेश में देखा हर रोज भोग लगता है, सवेरे कैसे मुरली चलने से पहले योग चलता है तो उसी योग में भोग रख देते हैं, क्योंकि सवेरे ही सब बना लेते हैं, नाश्ता भोजन दिन का रात का, सवेरे उठ करके नहा धो करके सब बना लेते हैं, अब भोजन तैयार है सारे दिन का सुबह ही कर लेते हैं, बाद में टाइम ही नहीं है, तो इसीलिए सारे दिन का ऐसे ही कर लेते हैं और फिर भोग भी रखते हैं और फिर रोज कुछ न कुछ स्टूडेंट्स को देते भी हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं हर एक अपना अपना। तो बाबा कहते हैं तो फिर जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है, वृक्षपति के आने से बृहस्पति की दशा बैठती है, फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है, वो एकदम हाईएस्ट, बृहस्पति की दशा एकदम हाईएस्ट और वो राहु की दशा एकदम लोएस्ट, एकदम नीचे, एकदम शिवालय से वैशालय बना देते हैं, राहु की दशा एकदम शिवालय से वैशालय बना देते हैं। अभी तुम बच्चों पर है बृहस्पति की दशा, पहले नया वृक्ष होता है, फिर आधा में आधा से पुराना शुरू होता है, बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं, हाँ माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं, बागवान पास ले आते हैं, हर एक माली फूल ले आते हैं, कोई तो ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, हाँ कितने अच्छे फूल है, कैसे अच्छे फूल, ऐसे अच्छे फूल ले आते हैं, तड़पते हैं बाबा के पास जाएं, हमको ले चलो बाबा के पास ले चलो, टीचर को बहुत आग्रह करते हैं, तो तड़पते हैं बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती है, बंधन में होती है लेकिन बाबा से मिलना है, मधुबन जाना है, तो कोई न कोई युक्ति रच करके मधुबन आ जाती है, तो कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां आती है। बाबा कहते हैं ये बड़ा अच्छा फूल आया, इतनी बांधेली लेकिन बंधन होते हुए भी कैसे बाबा के पास आ गई, तो बाबा कहेंगे ये बहुत अच्छे फूल को लाया है, ये बड़ा अच्छा फूल लाया है, भल माली सेकंड क्लास होगा, जो टीचर बहन लेकर आई वो इतनी योगी नहीं होगी, पर जो स्टूडेंट को लाई वो स्टूडेंट इतना योगी, बाबा के से मिलने के लिए तड़पन तड़पन, भल माली सेकंड क्लास है, माली से फूल अच्छे होते हैं, तड़पते हैं शिव बाबा के पास जाएं, जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, घर में मार खाती है, मार खाती है तो भी कहती है शिव बाबा हमारी रक्षा करो, उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है, मार भी खाती है और बाबा को याद भी करती है, बाबा हमारी रक्षा करो, वो सच्ची द्रौपदी, सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है, महाभारत में जो कहानियां है तो संगम की ना, तो बाबा कहते हैं पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है, कल पुकारा था ना द्रौपदी बन के पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए, युक्तियां बताते हैं ऐसे ऐसे भू भू करो, अपने पति को ऐसे ऐसे भू भू करो, समझाओ, क्या क्या समझाओ बाबा, कई बार मुरलियों में सुनाते हैं, मुझे श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, श्री कृष्ण मेरे स्वप्न में आता है और मुझे कहता है कि अगर तुमको मेरी दुनिया में आना है तो पवित्र बनो, मुझे तो बनना ही है। तो पति को भी ऐसे समझाते, भू भू करती है, तो ऐसे ऐसे भू भू करो, तुम हो भ्रमरिया, वो है कीड़ा, अब उसको विकार चाहिए और तुमको तो पवित्र बनना है, वो तो कीड़ा है, तो उन पर भू भू करो, उनको भी पंख आ जाएंगे, उन पर भू भू करते रहो, बोलो, अब क्या बोलो पति को, बोलो भगवानो वाच, काम महाशत्रु है, उसको जीतने से विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं, पति का के दिल को छू लेते हैं वो शब्द कि हाँ मेरी पत्नी कहती तो है तो जरूर हम भी बनेंगे पवित्र। कोई न कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर विकार के लिए तंग नहीं करते हैं, तो वो लग जाता है बोल, तो फिर ठंडे हो जाते हैं, तो कहते हैं अच्छा भल जाओ, छुट्टी मिल जाती है पति की, जाओ, फिर कई ऐसे कहते हैं तुम भले जाओ, मैं नहीं चलूंगा, तुम जो करोगे उसका मुझे आधा शेयर दे देना बस, हाँ मैं आपकी पूंछ पकड़ के मैं भी आ जाऊंगा पर मुझे नहीं आना है, कई ऐसे। तो बाबा कहते अच्छा भल जाओ, ऐसा बनाने वाले के पास जाओ, भले मेरी तकदीर में नहीं है, तुम जाओ, तुम भले जाओ, मेरी तकदीर में ये नहीं है। ऐसे द्रौपदियां पुकारती है, बाबा लिखते हैं भू भू करो, भू भू करो। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है, उल्टा पुरुष होते हैं बाबा उन्हें वो तो बताया, लेकिन कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती है क्या, जिनको सूपनखा पूतना कहा जाता है, फीमेल राक्षसनी, वो सूपनखा और पूतना, तो जिनको सूपनखा और पूतना कहा जाता है, पुरुष उनको फिर भू भू करते हैं, पुरुष फिर पति फिर पत्नी को भू भू करेगा, नहीं हमें पवित्र बनना है, पुरुष उनको भू भू करते हैं और वो कीड़ा बन पड़ती है, वो कहे नहीं हमको तो विकार चाहिए, वो कीड़ा बन पड़ती है, विकार बिगर रह नहीं सकती। बागबान पास किस्म किस्म के आते हैं, बात मत पूछो, अब क्या क्या बाबा बताए, इसीलिए उसको पूरा करने लिए बात मत पूछो, छोड़ो, हाँ बात मत पूछो। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ, हाँ कन्याएं कैसे कांटा बनती है मुझे ज्ञान नहीं लेना है, हाँ कांटा ही रहना है, विकारी बनना है तो कांटा हो गई ना, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ, बाप को सुनाएंगे नहीं छिपाएंगे तो वो वृद्धि होती जाएगी, झूठ तो चल न सके भगवान के घर में, कोई विकारी बनता रहे और यहाँ भी आए तो बाबा कहते झूठ तो चल न सके, ये तो शीश महल है, यहाँ जो कुछ जो करता है वो सब पता चल जाता है, कोई छिपा नहीं सकता, तो बाबा कहे झूठ तो चल न सके, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी, बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे, अगर होती है वृत्ति खराब बाबा को बताओ, माफी ले लो, संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो, नहीं तो फिर वृद्धि होती जाएगी, तुम्हारी वृत्ति खराब होती जाएगी, बाप को सुनाने से तुम बच जाएंगे, सच बताना चाहिए नहीं तो पछ, पहले तो बाबा ने कहा पछताएंगे, सजा खाएंगे, अभी बाबा कहे नहीं तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे, आत्मा महारोगी बन जाएगी, अगर नहीं बताएंगे सच, फिर बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, तो बिल्कुल महारोगी बन जाएंगे। बाप कहते हैं विकारी जो बनते हैं उनका काला मुंह होता है, वो काला मुंह करते अपना विकारी बनते हैं, पतित माना काला मुंह, कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं, कृष्ण को काला बना दिया है, राम को नारायण को भी काला दिखाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं, तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, हमारे जो चित्र है लक्ष्मी नारायण का चित्र उसमें नारायण को तो गोरा दिखाया ना, तो तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है, काला नारायण थोड़ी बनना है। हाँ मुझे याद है, हम कुछ कन्याएं बैठी थी बाबा के सामने, साकार बाबा की बात बता रही हूँ, तो बाबा सब कन्याओं को देख रहे, हम भी उसमें बैठे थे, और एक बहन थी बहुत काली थी, मतलब शक्ल उसकी साउथ इंडिया से आई थी, तो काफी डार्क भी कुछ होते हैं। तो बाबा ने उनसे पूछा, तुम काले नारायण से शादी करोगी या गोरे नारायण से? ऐसे पूछ लिया, काले नारायण से या गोरे नारायण से शादी करोगी? तो वो तो बहुत हैरान हो गई बाबा की ये बात सुनकर। तो उसने ये थोड़ी कहा, नहीं मैं गोरे नारायण से शादी करूंगी या काले से नहीं करूंगी। उसने कहा, बाबा वहां तो काला नारायण होता ही नहीं है। सीधा बाबा को भी कह दिया। बाबा ने तो उसकी परीक्षा ली, वही शक्ल तो उनकी थोड़ी सांवरी थी, तो इसीलिए बाबा वहां तो काला नारायण होता ही नहीं है, नारायण भी बहुत गोरा होता है तो लक्ष्मी भी बहुत गोरी होती है। तो बाबा ने कहा, इसके पास ज्ञान ठीक है, इसके पास ज्ञान ठीक है। तो तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है। वैसे तो बाबा पूछते थे किससे शादी करोगी, कोट पैंट वाले से या पीताम्बरधारी से कृष्ण से, या कोट पैंट कलयुगी कोट पैंट वाले से, लेकिन ये प्रश्न दूसरा ही पूछ लिया। तो सीधा उसने बाबा को ही बताया, बाबा ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये तुम्हारी तो ये एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़ी बनना है। ये मंदिर जो बनाए हैं ऐसे थे नहीं, मंदिर जो बनाए हैं ना काला विचित्र बना, बाबा कहते ऐसे थे नहीं, ये देवताएं तो सब गोरे ही थे, परंतु क्यों काला बनाया? क्योंकि विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है। आत्मा काली बन गई है, ये काले शरीर की बात नहीं है, काले शरीर वाले तो होते हैं। हाँ कहते हैं ना, भले शरीर के काले लेकिन दिल के तो साफ होंगे ना, तो दिल क्या साफ होना चाहिए। आत्मा काली बन गई है, आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चुड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली कहते हैं, बहुत भयंकर दिखाते काली कलकत्ता वाली, कितनी भयंकर शक्ल दिखाई देती है, बात मत पूछो कितनी भयंकर शक्ल। और उसमें भी लाल लाल आंखें, जीभ इतनी निकली हुई, क्या काली का चित्र बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे ये सब है भक्ति मार्ग, अभी तुम्हें तो ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त हो होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अपने आप को देखना है कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें धोखा तो नहीं देती है, अपनी चाल चलन का पोता मेल रख खामियां निकालनी है। वरदान, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्म इंद्री पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्म इंद्रियां धोखा न दे, कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। दे अभिमान आया तो क्या हुआ, जोश या क्रोध सहज आ जाता है। लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है वो सदा निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। आज का व्यक्ति इशारा कर्म योगी बनो। तो आज का व्यक्ति इशारा 6 तारीख, जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं, उनसे सहज कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। दादियों से हमें प्रेरणा मिलती थी ना, कैसे हल्के रहते हैं। कर्म योगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ तो कितना भी कार्य करते कर्म योगी रहेंगे। कैसे रहेंगे कर्म योगी? हल्के रहो, खुशी में रहो, खुशी खुशी कर्म करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।